कारी, कारी का अर्थ होता है करने वाला, और कारिणा मतलब करने वालों का। जो कर्म करने वाले हैं इस संसार में उनका गुणसंग अस्ति, प्रकृति के सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण का उन्हें संग है, और वास्तव में प्रकृति के गुणों के दबाव में उन्हें कर्म करना ही पड़ता है, यह व्यवस्था है। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते है, प्रकृति के गुण कर्म कराते हैं, करना पड़ता है उसको। कभी कभी मनुष्य न चाहते हुए भी धर्म करने लगता है। आप किसी के संग कहीं धाम में जाइए घूमने के लिए, तीर्थ में, दान देने की नहीं भी इच्छा होती है तो दूसरे लोग देते हैं तो वहां जबरदस्ती देना पड़ता है करना पड़ता है, और कभी कभी नहीं चाहते हुए भी पाप करना पड़ता है। सरकार से चोरी करनी पड़ती है, और किससे किससे क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि कारिणा हम गुण संग्रह अस्ति, प्रकृति के गुणों का साथ है। तो तमोगुण यदि ज्यादा बढ़ेगा तो आदमी अधर्म करेगा, रजोगुण भी बढ़ेगा तो अधर्म करेगा, जब सत्वगुण बढ़ता है तब वह धर्म का काम करता है। जैसे सवेरे हम लोग देखते हैं इसी जुहू के तट पर, समुद्र के तट पर बीच में, प्रायः सवेरे लोग सत्वगुण में रहते हैं, और भले वो शरीर के लिए काम करते हैं, व्यायाम करते हैं, तेज चलते हैं, लेकिन वास्तव में उस समय उनके मन में रजोगुण और तमोगुण नहीं रहता है। तमोगुण तो वेद छोड़ते ही बीत जाता है, और रजोगुण भी अभी चालू नहीं रहता है। रजोगुण का मतलब है दुकान में जाना, ऑफिस में जाना, कमाने के लिए बेचैन हो जाना, इसको रजोगुण कहते हैं। और तमोगुण में पड़े हुए सोए हुए, तो तमोगुण और रजोगुण बीत जाते हैं, सत्वगुण प्रेरित करता है चलो समुद्र के तट पर कह लो, और उस समय मनुष्य अपने को कुछ सुखी अनुभव करता है, समझदार अनुभव करता है। भगवान ने कहा है कि सुख संगे न बदनाति, ज्ञान संगे न भार, भारत सत्वगुण सुख की भावना के साथ बांधता है और ज्ञान की भावना के साथ बांधता है। तो सवेरे हम लोग देखते हैं कि लोग सत्वगुण में रहते हैं, और वह वातावरण शाम के समय जाइए तो वो वातावरण नहीं रहता है। तो शराब पीने वालों की संख्या बढ़ जाती है, और बहुत से स्त्री पुरुष जाते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, इसको गुण संग्रह करते हैं। प्रकृति के गुणों के संग में है जो, उसके अनुसार उसे करना पड़ता है। अच्छे काम भी होते हैं, बुरे काम भी होते हैं, प्रकृति के गुणों के दबाव के अनुसार। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि वैकुंठ में प्रकृति के गुण नहीं है, इसलिए वहां जीव तो गलती कर रहे संभावना नहीं है। कारिणाम गुरु संग्रह अस्ति, ये इस प्राकृत जगत की बात कही जा रही है। प्रकृति के गुण के दबाव में अच्छा बुरा कर्म होता रहता है। कोई यह कहे कि यदि कोई अकर्ता रहेगा, कुछ नहीं करेगा, तो उस पर कर्म बंधन नहीं लगेगा, तो इसका उत्तर देते हैं जमराज की दूध की, देहवान अकर्म कृत न ही, जो देह धारण किया है, देहवान है, देहवाला है जीव, वो बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। तो बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता, और कर्म करना ही है, तो इसका अर्थ है फल बनेगा, और फल के अनुसार यदि धर्म करेगा तो स्वर्ग जाएगा, और अधर्म करेगा तो नरक जाएगा। और यदि दोनों मिश्रित किया है तो कुछ स्वर्ग कुछ नरक, दोनों भोगना पड़ेगा। जमराज के दूध कहते हैं क्लियर हिसाब है कर्म करना ही पड़ता है और उसके अनुसार दंड बनता रहता है, फल बनता रहता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रवचन है कि हम सभी गुणों के संग में हैं। प्रकृति के जो तीन मोड्स हैं उनको गुण कहते हैं, और इन तीन मोड्स को, तीन भावों को मिलाकर के जितनी भी वस्तुएं बनी हैं उनको गुण कहते हैं। जितना प्राकृतिक पदार्थ है, जड़ पदार्थ, सब गुण है, और जीव सदा इन जड़ पदार्थों के साथ रह रहा है। और बाहरी जगत की बात तो छोड़ दीजिए, केवल शरीर भी उसका रहे तब भी उसे गुणों का संग करना पड़ रहा है। इसमें जीव बहुत थोड़ा है। उपनिषद में लिखा गया है कि बालाग्र सतभाग से सतधा कल्पितस्त च, यदि एक केश के, बाल के अग्र भाग के 100 भाग किए गए, जो संभव नहीं है, केश के अग्र भाग को 100 टुकड़ा करने वाली कोई मशीन नहीं है, नहीं किया जा सकता। लेकिन कदाचित मान लीजिए कोई 100 टुकड़ा कर दे उसका, और उसमें से फिर एक टुकड़ा को लेकर के 100 टुकड़ा किया जाए, उतना छोटा सूक्ष्म जीव का स्वरूप है। और हम इस पूरे जड़ पदार्थ में, गुणमय शरीर में थोड़ा सा है, थोड़ा सा पार्टिकल चिन्मय जीव है, बाकी तो सब लंप ऑफ मैटर, गुण संग है अस्थि। जीव वास्तव में महापरदेश में रह रहा है, चिन्मय जगत में रहना चाहिए जीव को, जहाँ केवल चिन्मय वस्तुएं हैं, स्पिरिचुअल चीज सब कुछ है, लेकिन जीव इस जड़ शरीर में गुणसंग है। तो जिन गुणों के परिणाम से यह देह बना है, तो वे गुण आपस में संघर्ष करते हैं, कभी सत्गुण बढ़ता है, कभी रजोगुण बढ़ता है, कभी तमोगुण बढ़ता है, और जब भी एक बढ़ता है तो दोनों को दबा करके बढ़ता है। भगवान ने 14वें अध्याय में भगवद गीता को बड़ा क्लियर बताया है कि किस तरह से रजोगुण बढ़ जाता है दबा करके सत्गुण को, सत्गुण किस तरह बढ़ता है, और जब पर्टिकुलर गुण बढ़ते हैं तो उसके कारण जीव के मन में, इंद्रियों में और शरीर में विकार देखा जाता है। इसके अनुसार स्पष्ट, जैसे मान लीजिए किसी में तमोगुण बढ़ गया खूब, और वह व्यक्ति रोने लगा, शोक तमोगुण का कार्य है। जो कोई शोक करता है या क्रोध करता है, लोभ करता है, तो ये तमोगुण का काम है। लोभ तो रजोगुण का काम है, लेकिन शोक, क्रोध, निद्रा, ये सब तमोगुण के काम है। जब तमोगुण बहुत अधिक बढ़ जाता है, जीव अनावश्यक शोक में पड़ जाता है, तो उसके आंखों से आंसू आना, गला सूख जाना, वाणी गदगद हो जाना, ये सब प्रभाव देखे जाते हैं। पहले तो ये मन को प्रभावित करते हैं गुण, और जब मन प्रभावित होता है तो शरीर भी प्रभावित हो जाता है। इस तरह से होता है, जो शरीर में क्रोध आ जाता है, पहले मन में क्रोध आता है, तो वह क्रोध मन से अपने को प्रकाशित करता है, उसके बाद आंख पर आता है, आंख से पता चल जाता है कि ये आदमी क्रोध में है कि किस भावना में है। छिपा नहीं सकता है कोई आदमी क्रोध को। मन के बाद क्रोध का पहला प्रकाशन नेत्रों पर होता है। नेत्र पर क्रोध आकर के रह जाए तब तो ठीक है, यदि वो वाणी पर आ गया तो अब रुक नहीं सकता है, तब गाली गलौज यह हो। अब जहां वाणी पर आ गया तो फिर हाथ में भी आएगा, लात में भी आएगा, पूरे शरीर को कवर कर ले। इस प्रकार से गुणसंग है हमारा। कभी कभी लोग ये लंज हो जाते हैं कि हमारे सामने आदमी चुप क्यों नहीं हो गया। हमने सुना है या कहते हुए कुछ लोगों को, मैं तुम्हारे बाप के समान हूं, कम से कम चुप रहना सीखो। तो आपका पुत्र बोल नहीं सकता है क्या? हम तुम्हारे बाप के समान है, तुम्हारे दादा के समान है। एक बार एक व्यक्ति कह रहा था कि एक लगभग 17-18 वर्ष के लड़के के साथ झगड़ा कर रहा था, एक वृद्ध व्यक्ति लगभग 60-65 वर्ष। उसने कहा, जानते हो मैं तुम्हारे दादा के समान हूँ, इसी तरह से मेरी दाढ़ी नहीं पक गई है। तो हमारे साथ एक लड़का था, उसने कह दिया कि जानते नहीं वो ज्ञान के मसाला से दाढ़ी पकाए हैं। ज्ञान का मसाला लगाए हैं इसे। तो बहुत रंज हो गया। दाढ़ी तो ऐसे ही पक जाएगी, चाहे ज्ञान हो चाहे ना हो, है कि नहीं? वो कहता है कि ऐसे ही मेरी दाढ़ी नहीं पकी है, इसका मतलब बहुत दिन का हो गया हूँ, मेरा ज्ञान बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन समय के बीतने से ज्ञान नहीं हो जाता है, ज्ञान प्राप्त करने से ज्ञान होता है। हम लोग ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो 80 वर्ष के हैं, 75 वर्ष के हैं, लेकिन एक अक्षर पढ़ना नहीं जानते हैं। काल क्या किया उनका, काल बीतने से उन्हें अक्षर ज्ञान भी नहीं हुआ। समय क्या करेगा, पढ़ने से ज्ञान होता है। इस तरह मैं ये कह रहा था कि बात की बात में बिना मतलब के क्रोध आ जाता है, क्योंकि मनुष्य गुणसंग में है। यह विश्वास रखिए कि कभी भी क्रोध आ सकता है, कभी काम वासना आ सकती है, कभी लोभ उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि कारिणाम गुणसंग अस्ति। कर्म करने वालों का प्रकृति के गुणों के साथ संग है। ये तो जोर लगा करके कृष्ण भावना में आया जाता है कि गुण संग छोड़ करके अब भक्ति का संग करो, स्वरूप शक्ति का। तो धीरे 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 गुणों का असर दिख जाएगा, हम लोग गुणातीत हो जाएंगे। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया है कि कैसे गुणातीत हो सकते हैं। मां च योग्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अव्यभिचारिणी भक्ति से मेरी उपासना करता है वह गुणों से पार हो जाता है। ये उपाय बताया है। तो बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है कि मनुष्यों का प्रकृति के गुणों के साथ संग है, इसलिए उससे शुभ अशुभ सब कर्म होते रहे। भगवान के दूतों ने पूछा था कि कथंसित ध्रियते दंड, दंड कैसे दिया जाता है, अर्थात किसको दंड दिया जाता है, कितना दिया जाता है, किस कारण से दिया जाता है। उसको संक्षेप में बता रहे हैं। जे न जावान यथा धर्मो धर्मो वेह समीपः सैव तत्फलं भुङ्क्ते तथा तावद् अमुत्र वै। येन जावान् यथा धर्मो धर्मो वेह समीहिता सैव तत्फलं भुङ्क्ते तथा तावद् अमुत्र वै। येन जिसके द्वारा यावान् जितना यथा जो अधर्म धर्म हुआ, जिस कर्ता के द्वारा जितनी मात्रा में जैसा अधर्म होता है या धर्म होता है, समीहित कार्य तो किया गया, तो वही व्यक्ति जो उत्पाद किया है या पूर्ण किया है स एव न तो अन्य, वही तत् फलम भुंगते, वह उसका फल भोगता। जो कर्म किया है, जितना कर्म किया है, जो कर्म किया है उसके अनुसार उसका फल भोगता है। स एव तत् फलम भुंगते, जितना भुगता है तथा तावद अमूत्र वही। अमूत्र का अर्थ है दूसरे जन्म में, अत्र का अर्थ होता है इस जन्म में यहाँ, और अमूत्र का अर्थ होता है दूसरी जगह पर, दूसरे जन्म में, दूसरे स्थान में भोगना पड़ता है। यहाँ का किया हुआ कर्म दूसरे शरीर में, दूसरे स्थान में, दूसरे काल में भोगना पड़ता है। कितना यावन अधर्म या अधर्म, जितना धर्म या अधर्म हुआ है, तावन तावत उतना धर्म भी, यहां लिखा गया है अधर्म भी, अथवा धर्म सब दृष्टांत के अर्थ में है। यमराज के दूतों के कहने का मतलब यह है कि जैसे जितना व्यक्ति धर्म करता है, जिस तरह का धर्म करता है तो उसके अनुसार उसे स्वर्ग ले जाया जाता है, उसी तरह से जिसने जितना अधर्म किया है, जो अधर्म किया है उसको दूसरे जन्म में उतना दंड दिया जाता है। इस कर्म के अनुसार अमूत्र, अमूत्र का अर्थ है परलोक में दूसरे जन्म में। कभी कभी लोग इस तरह का प्रश्न करते हैं कि यहां पाप करने वाले लोग क्यों सुखी हैं और धर्म करने वाले क्यों दुखी हैं। वास्तविक बात यह है कि जो लोग धर्म कर रहे हैं और फिर भी दुख देखा जाता है तो उनके धर्म का फल नहीं है, दुख है। पूर्व जन्म में कुछ गलती हो गई थी उसका फल है। और पापी यदि सुखी देखे जाए, ऐसे सभी पापी सुखी नहीं देखे जाते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर पापी सुखी देखा जा रहा है तो उसके इस पाप का वो फल नहीं है सुख, इस पाप का फल उसे परलोक में भोगना पड़ेगा। पहले उसने कुछ पुण्य किया था, धर्म किया था, इसी से उसको यहाँ सुख मिलता है। अमूत्र है, कोई जरूरी है कि हम जहां जिस समय जो कमा रहे हैं उसी समय भोगेंगे? नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। आदमी का ऑफिस कहीं है, कारखाना कहीं है, भोग रहा है अपने घर में, है ना, वो डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट टाइम में भोग रहा है। ऐसे शरीर वही है, एक उदाहरण नहीं बैठता, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि कोई आवश्यक नहीं है कि आज हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल आज मिलेगा, सेंट पर सेंट फल दूसरे जन्म में मिलेगा, ये शास्त्र कहता है। इस समय जो कर रहे हैं उसका फल दूसरे जगह मिलेगा और जो पहले किए हैं वो भोग रहे हैं। जैसे मान लीजिए आज कोई उत्पादन किया या नौकरी किया तो आज का वेतन तो खा नहीं रहा है, कुछ दिन पहला महीना मिला था उसको खा रहा है, अब जो कर रहा है उसका आगे मिलेगा। चाहे दुकान हो, चाहे सर्विस हो, व्यापार हो, कुछ खेती हो, कुछ भी हो, तत्काल फल नहीं मिलता है। किसान भी खेती करते हैं तो उस दिन भी खाते हैं जिस दिन बीज बोते हैं, है ना, खा करके काम करते हैं। लेकिन अभी बीज बो रहे हैं वो अन्न कई महीने के बाद आएगा, तो कर्म का फल इतना जल्दी नहीं आ जाता है, लेकिन आता है। ज्यादातर हमारे कर्मों का फल, ज्यादातर नहीं, 100% दूसरे जन्म में मिलेगा, वो भोगना पड़ेगा, चाहे सुख भोगे या दुख भोगे, जैसा कर्म होगा वैसा भोगना पड़ेगा। जेन जावन जथा धर्मो, धर्मो वेह समीहिता, स एव तत्फलम भुंक्ते तथा तावदम। स एव शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जो जैसा कर्म किया है वही फल भोगेगा। स एव, दूसरा नहीं। यदि शेयर करके मिल करके पाप किया है तब तो सब भोगेंगे ही, उसमें हो गए सब जितना जो किया है। लेकिन ऐसा कुछ लोग ये समझ सकते हैं कि हम परिवार के लिए पाप कर रहे हैं तो परिवार के लोग भी हमारा साथ देंगे नरक जाने में? नहीं, नहीं जाएंगे। वो पाप की कमाई खाए हैं तो खाने के कारण वो जाएंगे, अपना उनका कर्म हुआ, लेकिन जो पाप करके परिवार पोसता है वो जाएगा, फिर परिवार यही छूट जाएगा। यदि कोई पिता अपने पुत्र से कहे कि बेटा तुम्हारे लिए बहुत पाप किया, चलो नरक में कुछ साल तुम रहना, कुछ साल मैं रहूंगा, तो कहा नहीं, तुम जाओ। वो तुम्हारा बैग का रुपया कौन भोगेगा, मैं नरक में जाऊंगा। तो पिता की कमाई ले लेता है लेकिन सुख दुख नहीं, नरक भोग नहीं सकता। मृगारी के विषय में यही नारद जी ने कहा था, वो जो व्याध प्रसिद्ध व्याध चैतन्य चैतामृत का है मृगारी। नारद जी ने उसे कहा कि देखो तुम जो पाप करते हो तुम्हारे परिवार के लोग नहीं बांटेंगे। वो कहा ठीक है तो मैं घर से पूछ करके आ रहा है। नहीं, वाल्मीकि जी ने कहा था, रत्नाकर नाम का डाक। तो नारद जी को एक पेड़ में बांध दिया, कहा कि मैं यहाँ तक घर से पूछ करके आ रहा है, अगर झूठ बोला होगा तो तुमको दंड दूंगा। तो बांध करके चला गया। पूछा अपनी पत्नी से, बच्चा से और सब लोगों से कि हमने इतना पाप किया है, इस पाप में आप लोग भाग लेंगे कि नहीं, दुख भोगना होगा तो आप भोगेंगे कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हम क्यों दुख भोगेंगे, हम दुख नहीं भोगेंगे। इसी पर उसको वैराग्य हो गया। फिर आया नारद जी को खोल दिया और कहा कि हमें मंत्र दीजिए। तो उन्होंने राम राम कहा कि राम राम कहो, लेकिन वो रात दिन मरा मरा मारा मारा किया था, उसको राम राम भी भूल गया। बाद में उल्टा नाम जपने लगा, उल्टा नाम जप जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, तो ब्रह्मा जी के समान हो गया रत्नाकर उल्टा नाम जप करके। तो सीधा नाम जपने से क्यों नहीं भगवान मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से यहाँ जो सह एव वही तत्फलम भुगते, वह फल भोगता है। एव शब्द का अर्थ है न अन्य, अन्य कोई नहीं। पाप करके जिस परिवार को पोषते हैं, परिवार भी यही रह जाता है, घर भी यही रह जाता है, वो पैसा ऐसा सब यही रह जाता है और जीव अकेले चलता है भोगने के लिए पाप की कमाई। एक श्लोक में कहा गया है कि कौन लोग कहाँ छूट जाते हैं, तो बताया गया है कि पशु गोष्ठ में छूट जाते हैं। जैसे पशु आजकल का पशु तो ये कार है या मोटरसाइकिल है, हॉर्स पावर, ये सब घोड़ा है। जितना हॉर्स पावर का कार है उतना घोड़ा आपके घर में है, कहने का मतलब ये है। घोड़ा गाड़ी सब गैराज में रह जाएंगे मरने पर, जीव के साथ नहीं जाएंगे, यही छूट जाएंगे। ये गोश्त में छूट जाते, पशुस्थ गोश्त है। और भार्या कहाँ छूट जाएगी, पत्नी गृह द्वारी। उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि पति के साथ वो स्मशान में न जाए, तो गृह द्वारी उसको घर से बाहर नहीं जाने देते हैं, स्वजन तुम यहीं रह जाओ। और स्वजन लोग स्मशान तक जाते हैं। और देह कहाँ तक कहाँ पड़ा रहता है, देह चिताया, देह चिता पर जल जाता है। और जीव अकेले चलता है, जो किया है वो भोगने के लिए, कोई साथी नहीं, कोई परिवार नहीं, कुछ नहीं। यमराज के दूत मारते हैं, पीटते हैं, करते हैं, कोई सहायता करने वाला नहीं। यदि बेटा भक्त हो गया है या श्राद्ध कर दिया अच्छी तरह से तो कुछ सुनवाई वहाँ होती है, नहीं तो सब भोगना पड़ेगा। इन श्लोकों में ये भाव व्यक्त किए गए, स एव तत्फलम भुक्त, वही कि न केवलम सूर्या दया धर्मा धर्मम साक्षिण अपितु अर्थापति इत्याहु जत्थे। अगले श्लोक में कह रहे हैं केवल सूर्य आदि की गवाही से ही दंड नहीं दिया जाता है उसको। ऐसी बात नहीं है कि केवल सूर्य चंद्रमा आदि गवाह है, गवाहों को तो एक तरफ रख दीजिए। संस्कृत में अर्थापत्ति साधन है, उसके द्वारा भी पता लग जाता है कि कौन पापी है कौन धर्मात्मा है। अर्थापत्ति पांच प्रकार से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसमें एक साधन है। अर्थापत्ति का अर्थ होता है अनुमान, अनुमान से पता लग जाता है कि कौन धर्म किया है और कौन अधर्म किया है और क्या गति होगी उसकी आगे और पहले भी वो क्या था। अनुमान भी दो प्रकार का होता है, एक तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया जाता है और एक कार्य को देख करके पिछले कार्य का और अगले कार्य का अनुमान किया जाता है, जिसको अर्थापत्ति कहते हैं। शिलजीव गोस्वामी ने लिखा है किस तरह से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो इसमें यह अर्थापत्ति है, उसको कहते हैं जथे हदेव प्रवरः त्रैलोक त्रैविध्यम उपलभ्यते भूतेश गुण वैचित्र्या तथा अन्यत्र नमीयते। हे देव प्रवरः, हे देवताओं में श्रेष्ठ, भगवान के पार्षदों के लिए संबोधन दे रहे हैं, हे देव प्रवरः जथा इह, जैसे इस जगत में इस जन्म में त्रैविध्यम उपलभ्यते, तीन तरह के प्राणी देखे जाते हैं, कोई दुखी है कोई सुखी है कोई दोनों है, मिश्र है मिश्रित है, और कोई पापी है कोई पुण्यात्मा है और कोई कोई दोनों है, इस तरह से देखा जा रहा है। त्रैविध्यम उपलभ्यते, कहीं भी दुनिया में जाइए आप देख सकते हैं कुछ आदमी बहुत दुखी हैं, कुछ आदमी बहुत सुखी हैं और कुछ आदमी मिले हैं, दुख और सुख दोनों। भूतेषु गुण वैचित्र, क्यों है ऐसा, क्योंकि जीवों पर गुणों की विचित्रता, अनेक प्रकार के गुण हैं, तीन गुण मिल करके पितृ के नौ नमा एकासी स्तोष अनंत हो जाते हैं, तीनों गुणों का आपस में रिएक्शन होता है, इसलिए जीवों की दशा जो है विभिन्न प्रकार की हो जाती है गुण वैचित्र के कारण। तो जैसे गुणों की विविधता के अनुसार यहाँ त्रिविधता देखी जाती है, तो इससे अनुमान कर लिया जाता है कि अन्यत्र जन्मांतरे अपि ऐसा होता है, इसके बाद दूसरा जन्म होगा तो उस जन्म में भी कुछ लोग सुखी रहेंगे कुछ दुखी रहेंगे कुछ मिश्रित रहेंगे, सब लोग एक समान नहीं हो जाएंगे, और इसे अनुमान कर लिया जाता है कि इसके पहले भी थे तो सब एक समान नहीं थे, भिन्न भिन्न योनि में भिन्न भिन्न देश में भिन्न भिन्न कर्म किए थे, इस तरह समझा जाता है। इसी को दृष्टांत से समझा रहा है, वर्तमानोन्ययो कालो गुणाभिज्ञापको यथा एवं जन्मान्योरे तद्धर्मा धर्म निदर्शनम्। जैसे वर्तमान काल अन्ययो गुणाभिज्ञापको, वर्तमान समय भूतकाल और भविष्य काल के गुणों को ज्ञापित करता है, बता देता है। श्री कृष्णदास स्वामी उदाहरण देते हैं, जैसे बसंत बसंत ऋतु, मान लीजिए बसंत ऋतु वर्तमान में चल रहा है, तो बसंत में कुछ स्पेशल फूल खिलते हैं और फल लगते हैं, भौरे गुनगुनाते हैं, कोयल गाते हैं, मंद सुगंध समीर बहता है, तो इसके द्वारा सहज अनुमान किया जा सकता है इसके पहले जितने भी बसंत बीते हैं उनमें इसी तरह के फूल खिले होंगे, इसी तरह के फल लगे होंगे, है ना। इसको अर्थापत्ति कहते हैं। जब हम इस वर्तमान बसंत को देखते हैं तो जो बसंत ऋतु की विशेषता है वो जितने भी बसंत बीत गए हैं उनमें लगभग ऐसा ही वातावरण रहा होगा, और आगे भी जितने बसंत आएंगे उनमें भी इसी तरह के फूल खिलेंगे इसी तरह के फल लगेंगे ऐसा ही वातावरण रहेगा। वर्तमान काल अन्ययो हो बीते हुए भूतकाल और आने वाले भविष्य काल गुणों को बता देता है। एवं इसी तरह से जन्मान्यो रेतत धर्मा धर्म निदर्शन एतत जन्म, ये जो हमारा वर्तमान जन्म है, यह अन्ययो धर्मा धर्म निदर्शन, यह अन्य जन्मों के, बीते हुए जन्म के और आगे आने वाले जन्म के धर्म और अधर्म को पूरा पूरा दिखा देगा, बता देगा। हरे कृष्ण, आइए आइए, आगे आइए, घर आइए। प्रकार वर्तमान कोई काल विशेष, बीते हुए काल और आने वाले काल का सूचक होता है, बता देता है। उसी तरह से मनुष्य का यह वर्तमान जन्म बता देता है, दिखा देता है पिछले जन्म को और अगले जन्म। भूतकाल में यह मनुष्य कितना पापी था या कितना धर्मात्मा था, उसके वर्तमान जन्म से सब पता चल जाएगा। और आगे भी उसका जन्म धर्म में रहेगा या अधर्म में रहेगा, ये पता चल जाता है। आगे वर्तमान बता देगा। बसंत ऋतु के उदाहरण से इसको समझाया गया है। इस जन्म से पता लग जाएगा कि हम पहले क्या थे। एक भृगु संहिता ग्रंथ है, उसमें तो स्पष्ट सब कुछ बताया गया है। वर्तमान को देख करके बता दिया जाएगा कि पहले क्या थे और बाद में क्या होने वाले, साफ साफ बता दिया जाएगा। वर्तमान जन्म हमारे भूत जन्म, भूत काल में जो जन्म हो गया है, शरीर मिला है, जो भोग मिला है, जो स्वजन मिले हैं भूत काल में, और आगे जहाँ हमारा जन्म होगा, जो स्वजन मिलेंगे, कौन जोनी मिलेगी, कहाँ जाएंगे, सब पता चल जाएगा, वर्तमान काल बता देगा। ये समझ लीजिए कि जो व्यक्ति वर्तमान में धार्मिक है, तो इसका अर्थ है जो भूत काल में ही धार्मिक था, इस जन्म में जो धर्म किया था, तब उसकी मति भगवान में लगती है, नहीं तो नहीं लग सकती। और इस समय जैसी मति है, जैसा शरीर है, जैसी भावना है, जितना धर्म करते हैं, जैसा हम धर्म कर रहे हैं, करेंगे इस शरीर में, तो आगे भी लगभग ऐसी स्थिति रहेगी, सहज अनुमान किया जा सकता है। यहीं से पता लग जाता है कि कौन आदमी किस योनि में जाएगा, किस जगह पर जाएगा, क्या क्या भोग उसको मिलेगा, सब पता चल जाता है। आजकल जो लोग अंडा खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं और अनशन खा रहे हैं, तो इसमें संदेह नहीं कि उनको सुअर का जन्म दिया जाएगा। प्रभुपाद जी ने एक जगह कहा है, वर्तमान जन्म बता देगा, जब इस जन्म में सुअर जैसा रह रहा है, तो अगले जन्म में देवता थोड़े हो जाएगा। आदत अनशन खाने की है, इसका मतलब कि ऐसा फ्री किया जाएगा कि खाने में कोई नियम नहीं रहेगा, जो भी खा ऐसा भगवान बंद देते। तो हमारा वर्तमान जन्म पिछले और अगले जन्म के धर्म और अधर्म का निदर्शन करा देता है। निदर्शन करते नितराम दर्शन, साफ साफ पता चल जाएगा कि हम पहले क्या थे और बाद में क्या होने वाला है। इसलिए वर्तमान को सुधारना चाहिए। तो पिछले जन्मों पर तो दस नहीं है, लेकिन वर्तमान के अनुसार आगे जन्म होने वाला है, वो तो सुधार सकते हैं। जमराज के पार्षद बता रहे हैं कि ऐसे गवाह तो हैं, साक्षी तो हैं, लेकिन साक्षी को एक तरफ छोड़ भी दिया जाए तो ऐसे अनुमान से भी जान लिया जाएगा कि ये पापी है या ये धर्मात्मा, ऐसा है। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि अजामिल पापी है, वर्तमान में जो वेश्यागमन किया है, चोरी किया, हिंसा किया, क्या क्या किया, तो कई जन्मों का एक पापी है और इसीलिए आगे भी नरक में इसको ले जाने जरूरी है, इसको छोड़ दीजिए। ये तो बात कह दी अर्थापत्ति, गवाह की बात कहे अर्थापत्ति कहे। अब कह रहे हैं कि ये सब तो एक तरफ है, मनसल व पूरे देव पूर्व रूपम विपश्यति अनुमीमांसते पूर्वम मनसा भगवान अजह। इस श्लोक में दो अर्थ चलते हैं, एक तो अर्थ जमराज जी है और दूसरा परमात्मा हृदय अंतर जाने। तो पहले जमराज जी का अर्थ लेते हैं। देव मतलब सर्व पूज्य भगवान धर्मराज पूरे अपने नगर में संयमनीपुरी में रहकर ही मन से ही सबके पूर्व रूप को देखते और अपूर्व रूप की मीमांसा करते हैं, अनुमीमांसा करते हैं, बाद में विचार करते हैं। जमराज जी अपने पुरी में रहते हैं प्रायः, बहुत कम इधर उधर घूमते हैं क्योंकि वहां पर पापियों को दंड देने का फैसला करना होता है, बहुत महत्वपूर्ण पद है, सुप्रीम जज है तो एक दिन की फुर्सत नहीं, वहां संडे फंडे नहीं चलता है, बंद है ऑफिस, क्योंकि प्राणी रोज मरते हैं और उनको दंड देना उनका कार्य है। लेकिन वे इतना एक्सपर्ट है, वे ब्रह्मा जी के समान है शक्तिशाली, अतः अपने लोक में रह करके ही जीवों के मनुष्यों के खास करके पूर्व रूपम विपश्यते विशेषण पश्यते पूरा पूरा देख लेते। पूर्व रूपम का अर्थ है कि यह पूर्व शरीर में मर करके जमराज कहा जाता है, उसके पहले जो शरीर है मतलब हम लोगों का ये शरीर, पूर्व रूपम विपश्यते वो देख लेते हैं कि कितना धर्म किया है कितना अधर्म किया है किस तरह का आचरण किया है, पूरा देखते हैं एक एक सेकेंड का। यदि जमराज जी से पूछा जाए कि अमुक पापी 1 करोड़ वर्ष पहले इस घंटा पर इस मिनट पर इस दिन को क्या किया था तो तुरंत उत्तर दे देते हैं, इतना समर्थ है, क्योंकि भगवान इसमें लिखा गया है सर्वज्ञ और अजह अजन्मा, उनका शरीर नहीं बदलता है इसलिए पूरा पूरा ज्ञान रखते अजन्मा अजह। अब आप विचार कर सकते हैं कि एक व्यक्ति अनंत कोटि जीवों के विशेष मनुष्यों के कर्म को उनके आचरण को याद रख रहा है और उसके अनुसार अपूर्वम अनुमीमांसते, अपूर्व का अर्थ है कि बाद में इसको क्या शरीर दिया जाएगा, कहाँ शरीर दिया जाएगा, क्या खाने को दिया जाएगा, कितना मारा पीटा जाएगा या देवता बनाया जाएगा, इसको क्या क्या सुख दिया जाएगा, इसको अनुमीमांसते विचारयति विचार करते, पहले के आचरण को देख लेते हैं तब बाद में उसको क्या शरीर मिलेगा भोग मिलेगा सब विचार कर लेते हैं। इसका अर्थ है कि प्राणी पाप करके बच जाए ये संभावना ही नहीं। एक तो उधर गवाह लगे हुए हैं और दूसरी अर्थापत्ति न्याय है और तीसरा जमराज जी स्वयं देखते रहते हैं और चौथा परमात्मा हृदय में बैठा हुआ सब देखते हैं, जहां जहां जीव गया जिस जिस शरीर में वो सब भगवान देखते हैं। तो भगवान में और जीव में भेद है, भगवान सब देखते हैं। पूर्व रूपम विपश्यति विचार कर लेते हैं और उसके अनुसार दंड देते हैं, ऐसे अंदाज से दंड नहीं देते हैं, सब देख करके कितना पाप किया है इसको किस नरक में गिराया जाए, कितना दिन गिराया जाए, कितना मारा पीटा जाए, सब बिल्कुल हिसाब से रहते हैं। आजकल हम लोग देखे हैं कुछ लोग जो बैंक में रुपये जमा करते हैं, कहीं पैसा कहीं मान लीजिए मार्केटिंग करना है तो उनको कोई जरूरी नहीं कि कैश लेकर के जाएं, क्रेडिट कार्ड लेकर के जाते हैं, कहीं तेल भराना हो गैस भराना हो यहाँ तक कि उनको नोट भी लेना हो पैसा तो मशीन में से आ जाते हैं। लेकिन इतना उनका माइनस हो जाता है, इतना सूक्ष्म नियम है बैंक में जमा किया हो रुपया उनका माइनस होता रहता है, चलता रहता है। तो मनुष्यों के पास जब इतनी बारीक व्यवस्था है तो जमराज के यहाँ कितनी बारीक व्यवस्था होगी, कितनी सूक्ष्म व्यवस्था है, सब देखते रहो, इतने समर्थ हो। पूर्व रूप को देख करके अपूर्व रूप पर विचार करते हैं कि जब जस्यानुरूपम भवति तब विचारयति, जिसके लायक जो शरीर होना चाहिए, जो दंड होना चाहिए, जो पुरस्कार होना चाहिए, वो सब निश्चित कर लेते हैं, उन्हें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतने गवाह हैं तो ऐसा मत समझिए कि बार हो जाकर के गवाही देते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती। धर्मराज जी अकेले समर्थ थे, ऐसे फिर भी ये लोग अपनी अपनी गवाही भेंट देते हैं, लेकिन धर्मराज जी उसको देखते नहीं, इतना कंप्लीट ज्ञानी है कि वो सब देख लेते हैं। इसलिए एक ही श्लोक में दो बार मनसा शब्द का प्रयोग किया गया, मनसैव और बाद में मनसा भगवान अगर, कहीं जाते नहीं है देखने के लिए कि देख देख करके और ये लिखेंगे कि कौन क्या पाप कर रहा है, बैठे बैठे पूरे एवं अपने नगर में ही सब देखते रहते। जैसे मैं कल कैमरा का उदाहरण दिया था, स्टोर में दुकान में लोग खरीदते रहते हैं और मालिक इस चैम्बर में बैठ करके और स्क्रीन लगाया रहता है, देखता रहता है कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, कैसे कर रहा है। जमराज जी की नगरी का नाम है संयमनी, संयमनी उसको इसलिए कहते हैं कि समग्र मनुष्यों को जीवों को संयम में रखने वाली सिटी है। इसका सही सही अनुवाद होगा तो कंट्रोलिंग सिटी कहा जाए, पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने वाली नगरी, वो व्यक्ति वहां रहते हैं और वहीं से सब कुछ देखा करते हैं। तो हम लोग तो भूल गए अपने पूर्व जन्म में क्या क्या किए थे, कैसे कैसे जन्म लिए, कौन स्वजन बना था, कौन शत्रु था, क्या खाए क्या पिए, सांप बन करके रहेंगे या इंद्र बन करके राज्य किए, सब भूल। इसीलिए अगले श्लोक में कह रहे हैं कि अज्ञ, एक तरफ अज्ञ है और एक तरफ भगवान, तो भगवान अनंत कोटि जीवों के कर्म को देखते रहते हैं और अज्ञ जीव अपने ही कर्मों को नहीं देख पाता है। बड़ा सुंदर दृष्टांत के द्वारा इसको समझा रहे हैं। यथाज्ञ तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तने वही न वेद पूर्वम अपरम नष्ट जन्म स्मृति तथा। जैसे तमसा युक्त कोई व्यक्ति निद्रा से युक्त है और निद्रा में वह मान लीजिए बहुत बहुत सपना देख रहा है, जिस समय जो स्वप्न उसको आ रहा है उसी स्वप्न की उपासना करता है। उपास्ते का अर्थ है अहम इदम इति मन्यते, सपना में जो देह मिला है उसी देह को मैं मानता है और उस देह के संबंधियों को मेरा मानता है। जो सपना जिस समय उदित रहता है उसी को देखता है और इसके पहले वो बहुत बहुत सपना देख चुका है और आगे भी सपना देखेगा, उसकी याद उसे नहीं आती है ना। जो सपना देख रहा है बस उसी को सत्य मानता है, इसके पहले भी वो सपना बहुत देख चुका है इसकी याद नहीं आती है और आगे भी बहुत बहुत सपना देखेगा इसकी याद नहीं आती है। सपना की तो बात छोड़ दीजिए, पहले वो जग करके बहुत बहुत काम किया था, ऑफिस गया था या खेत पर काम करने गया था, शिक्षक था, लीडर था, क्या क्या भाषण दिया, जग करके सब भूल जाता और आगे भी जग करके क्या क्या करेगा, क्या खाएगा पिएगा घूमेगा सब भूल जाता है, केवल सपना की याद उसे बात रहती है। ठीक उसी तरह से नष्ट जन्म स्मृति तथा मनुष्य को नष्टा जन्मना स्मृति जस्य सह, बहुत बहुत जन्मों की याद भूल गई है उसकी और आगे भी जन्म लेगा ये तो याद करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जन्म लिया हुआ सब भूल गया, करोड़ों करोड़ों बार जीव जन्म लिया है, प्रत्येक बार उसको शरीर मिला है 84 लाख जोड़ियों में से, वहां खाया है, पिया है, खेला है, गाया है, कितना बार इंद्र बना होगा या कीट पतंग बना होगा, लेकिन आज याद है किसी को? इसमें से एक भी आदमी याद कर सकता है? नहीं याद। तो क्या आप समझते हैं कि कोई याद नहीं किया है? भगवान अजह अजन्मा भगवान सब देखते हैं, हम लोग तो नहीं देखते। हम तो व्यक्त में वो उपास होते, जो व्यक्त शरीर है इस समय अपने कर्म फल के अनुसार ईश्वर के द्वारा जो उपस्थापित देह है, जो देह दिया गया है, हम देह लिए नहीं है, ईश्वर ने भगवान ने हमको ये देह दिया है, तो हम इतने अज्ञ हैं कि इस देह को ही मैं मान बैठते हैं। व्यक्त में वो उपासक है, कर्मों के अनुसार भगवान ने यह देह दिया है तो इसी देह को मैं मानते हैं, देह के संबंधियों को मेरा मानते हैं, अपना गांव मानते हैं, नगर मानते हैं। इसके पहले भी हमारा कई बार एड्रेस बदल चुका है, उसका कोई पता नहीं। तो ठीक इसी तरह से एक दिन जब दूसरा जन्म मिलेगा तो इस जन्म की बात हम बिल्कुल भूल जाएंगे, बिल्कुल याद नहीं आएगी कि हम बंबई नाम का कोई शहर भी है और इसी बंबई में जन्म लेंगे। कुत्ता बन करके दिल्ली बनकर तो पता नहीं चलेगा कि बॉम्बे शहर कहाँ है, मीरा रोड कहाँ है, दादर कहाँ है, सब कुछ दौड़ दौड़ करके भोजन खोजेंगे कुत्ता बनने के। कार से चल रहा है कल चार पैर पर दौड़ेगा, ये हो जाएगा। इस तरह से स्थिति बदलेगी और कोई भी याद नहीं कर पाएगा कि हम बॉम्बे में जन्म लिए थे और यह थे वह थे यह थे, पूरा भूल जाए। और आगे तो भूले ही नहीं है कहाँ जन्म होगा क्या होगा। नष्ट जन्म स्मृति तथा न वेद पूर्वम अपरम, पहले की याद नहीं करता हर बाद की याद नहीं करता है। बड़ा सुंदर दृष्टांत है, जैसे सपना देखने वाला सपना काल में न जागृत की याद करता है पहले की न बाद की, और न तो अन्य सपनों की याद करता है, केवल जो व्यक्त सपना है केवल उसी को उपासना करता है, उसी में लगा रहता है। यही दशा हम लोगों की है, इस देह में जन्मे हैं तो इसी को सब कुछ मान रहे हैं, सब भूल गए। और वैसे बुद्धिमानी से तो विचार करके देखा जाए तो शरीर छूट जाएगा, हम इस शरीर को भूल जाएंगे, कौन सी आश्चर्य की बात है। इस शरीर में रहते हुए भी हम अपने को बहुत भूल करके रहते हैं, इस शरीर में भी बहुत ज्यादा हम भूल करके रहे जबकि शरीर की याद नहीं आती है। जैसे शयन सुसुप्ति गाढ़ निद्रा की स्थिति है या सपना, तो प्रतिदिन हम इस शरीर को कम से कम 6 घंटा भूलते हैं ना, इस देह को बेड पर भूलते हैं रोज 6 घंटा भूलते। बच्चा जब थे तब तो बहुत भूले रहते, बच्चा 12-12 घंटा 16-16 घंटा सोते हैं और जगते हैं तो रोते रहते हैं। सब माँ खिला पिला देती है तो बस फिर सोते रहते। इस तरह से मान लीजिए हम तो शरीर को रोज भूल रहे हैं, प्रकट है भूल रहे हैं, और सबको यदि जोड़ा जाए विस्मृति को तो प्रतिदिन यदि 6 घंटा जोड़िए और कोई आदमी यदि 80 वर्ष जीवित रहता है तो इसका मतलब कि 20 साल तक अखंड भूला रहा शरीर को, तो सबको एक साथ जोड़ा जाए है ना। 20 साल तो अखंड भूला रहा, न देह की याद रही, न परिवार की याद रही, न इसकी न उसकी, कुछ नहीं। जब मैं यह बात एक दिन कह रहा था एक जगह पर तो एक व्यक्ति कहा, नहीं महाराज जी 30 साल वो 20 साल स्वीकार नहीं किए। मैंने कहा कि अगर 6 घंटा रोज जोड़ा जाए तो 80 वर्ष जीने वाला व्यक्ति 20 साल तक भूला रहता है। अखंड इसी शरीर में रह करके हम इस शरीर को भूल गए तो फिर अन्य शरीर को भूल गई नहीं, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। किसी से पूछा जाए कि आप माँ के गर्भ में थे, याद है? नहीं याद है ना, विस्मृत है। जब हम इसी शरीर में माँ के गर्भ में थे, कोई याद नहीं है तो पूर्व शरीर कैसे याद रहेगा? नहीं याद है इसलिए लोग कह देते हैं हम, हमारा दूसरा शरीर था ही नहीं, हम हमेशा से केवल ऐसे ही। अरे हमेशा से कैसे? कई तरह से इसी शरीर में हम भूल रहे हैं। वो 30 साल इसलिए कह रहे थे कि बच्चा में ज्यादा सोते हैं और बूढ़ा भी हो जाते हैं तो उस समय भी सोने के अलावा दूसरा काम ही नहीं रहता है। जगने पर घर के लोगों को गाली देते हैं, बूढ़ा गाली इसलिए देता है कि गाली ही एकमात्र अवलंबन रहता है, नहीं तो उसको कोई खाने को नहीं देगा। जब कुछ गाली देता है तो लोग उब करके दे देते, दे दो खाने को, बक रहा है, गाली दे रहा है। एक भक्त कह रहे थे कि बूढ़ा आदमी शब्द वेदी बाण चलाता है तब खाने को मिलता है। खटिया पर लेते लेते जब गाली देगा तब कोई खाने के लिए लाएगा, तो इसका मतलब शब्द वेदी बाण चला रहा है। शब्द सहन नहीं होता है तब लोग देगा, बुढ़वा बक रहा है दे दो खाने को, ऐसा कहते हैं। तो उस समय वो भूले रहते हैं, बच्चा तब तो बिल्कुल भूले रहते हैं। और आजकल के नौजवान जो ज्यादा सोते हैं तो उनका तो 30 से भी बढ़ जाएगा, आधी उम्र समझ लीजिए सो करके बिताते हैं। प्रहलाद महाराज के अनुसार उन्होंने कहा है जीवन यदि 100 वर्ष का है तो 50 साल तो सोने में चला। जिंदगिया बिताओला तो सोई सोई के, हमारे यहाँ गीत गाते हैं सो सो करके जिंदगी बिता दिया। हम भूल गए हैं इस तरह से, भूलना स्वाभाविक, ये शरीर ही जो है वो भूलने के लिए बनाया गया है। शरीर अविद्या जाल, ये अविद्या का जाल है, एक अविद्या नहीं है। ये अविद्या से ही शरीर बनाया गया है और उसमें भी जो इंद्रिया है, जड़े इंद्रिया ताहे काल, इसमें जो भगवान ने इंद्रिया बना दिया है ये तो काल है वास्तव, केवल विषय भोग के लिए रहती उत्सुक रहती है। तार मध्य जिहवा रहती और उन इंद्रियों के बीच जो ये जिहवा रानी है, लोभमय सुदूर मति, ये तो लोभमय है और इसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई है। काके बेटा कठिन संसार, इस जीव को जीतना बहुत कठिन, लेकिन भगवान कृष्ण बहुत दयामय है, दया करके अपना प्रसाद दे देते हैं, इसे खाओ और इस इंद्रिय को जीत लो। कृष्ण बड़ दयामय, करी बारी जिहवा जय, जिहवा पर जय प्राप्त कराने के लिए स्व प्रसाद अन्न दिला भाई, उससे ही अन्न अमृत खाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम दास सहता ललिता।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे।
भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में कहा है कि मृत्यु का अर्थ है इस शरीर की अत्यंत विस्मृति। कुछ देर के लिए हम भूलते हैं तो यह अखंड मृत्यु है। मान लीजिए 10 बजे हम मरने चले, फिर 4 बजे जग जाते हैं तो अखंड मृत्यु है। और एक दिन ऐसा जीव भूलेगा इस शरीर को कि फिर इसकी याद नहीं करेगा, तो वही होगी अखंड मृत्यु, अब दूसरे शरीर में चले जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सपना देख रहा है तो सपना में इस शरीर को भूल जाता है, बेड पर अपना काम धंधा सब भूल जाता है, स्वजन आदि सब भूल जाता है, और कदाचित मान लीजिए सपना के शरीर में ही उसको जन्म दे दिया जाए तो ये तो सब भूल ही जाएगा, सदा के लिए भूल जाएगा। या किसी को जन्म कहते हैं, तो शरीर को भूलना मरण है और दूसरे शरीर में अहम बुद्धि करना, उसमें स्मृति करना है जन्म है। जन्म और मृत्यु को समझना तो बहुत आसान है, यही वास्तव में प्रकट विज्ञान है कि आदमी समझ जाएगा कि हाँ हम मरेंगे, हम शरीर को भूलेंगे। तो अब कम से कम इस बात को सुन करके प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि अब हम बहुत कम देर मरेंगे, रोज ज्यादा देर नहीं मरेंगे, केवल थोड़ा मर कर काम चला करके मंगला आरती में उठ जाएंगे। वास्तव में बहुत अज्ञान की दशा है, सोना जीवन का फालतू काम है, बेकार काम है। इसीलिए जो लोग अध्यात्म में बहुत उन्नत हो जाते हैं वो लोग बहुत कम सोते हैं। ऐसा लिखा गया है कि जो लोग अध्यात्म में उन्नति कर लेते हैं उनका भोजन और निद्रा कम हो जाते हैं, बहुत कम खाते हैं और बहुत कम सोते हैं। और मायाबद्ध जीव जो ठीक से विपरीत होते हैं, खूब खाते हैं और खूब सोते हैं, ये उनकी दशा है। एक ऐसे ही अज्ञान में है उसमें भी सो करके बिता रहे और ऐसे लोग जगे भी रहे तो कोई लाभ नहीं है जगे हुए लोगों को ही भक्ति विनोद ठाकुर जगा रहे, जीव जागर गोरा चांद बोलो कतर निद्रा जाओ माया पिशा छिर खोल। कितनी निद्रा जा रहे हो माया पिशाची के कोले गोद में, क्यों सो रहे हैं? तो जो भजन नहीं कर रहे हैं भगवान कृष्ण का, तो उनके जगने में और सोने में कोई अंतर नहीं। तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ में एक जगह कहा है कि जो लोग भगवान के भक्त नहीं है, पापी हैं, वो बल्कि पूरा जिंदगी सो करके रह जाते तो अच्छा रहता, क्योंकि सोने से वो पाप नहीं कर पाएंगे जग करके तो और जीवन बिगाड़ लेंगे, पाप करेंगे। वो कहते हैं कुंभकर्ण सम सोवत नीक है, अगर वे कुंभकर्ण की तरह सोए रहे तो यही नीक है, यही अच्छा है। उदय उदय खेत सम अरिष्ट ही के, उनका उदय होना ही जगना ही संसार को सहस नहस करने के लिए होता है, जो खल होते हैं। अच्छा है जो कुंभकर्ण की तरह सोए रहे तो कम से कम जनता को दुख नहीं देना। ये भक्तों के लिए मैं बात कह रहा हूं कि उन्हें बहुत नहीं सोना चाहिए। मैं एक बात देखा हूं बॉम्बे में कि अपने मंदिर में कि भक्त बहुत कम सोते हैं। मैं भी अन्य जगह की अपेक्षा यहां सबसे कम सोता है कार्यक्रम में बीतते बीतते तो रोज 11 बज जाता है, कभी कभी 12 बज जाता है, और उधर 3:30 में जगना ही, 3-3.5 घंटा से किसी दिन ज्यादा सोने को नहीं मिलता। और कुछ भक्त दिन में भी अपनी कृपा बनाए रखते हैं, आते रहते हैं, तो इसलिए दिन में भी कोई अवसर नहीं मिल पाता यह अच्छा है वास्तव में और फिर भी दुख नहीं होता है। इंगेजमेंट के कारण निद्रा कम हो जाती है। नहीं, सच्ची बात तो यह है कि भक्तों के कारण निद्रा कम होती है। मन में बना रहता है कि मंगलारती में नहीं जाएंगे तो भक्त लोग क्या कहेंगे, इस कारण से निद्रा टूट जाते हैं। तो वास्तव में सच्चा हृदय से पूछा जाए तो अभी अनुराग नहीं हुआ है मंगलारती, जो प्रेम होता है कि नहीं किसी भी हालत में उठ ही जाना है, ये नहीं। ये तो साधु संग होता है, भगवान के भक्तों का संग है तो चलो उसमें पड़ता है। मैं व्यक्तिगत अपनी स्थिति कह रहा हूँ इस तरह है, यहाँ एक शांत है, मंदिर का वातावरण है, ज्यादा देर नहीं मर सकते, हमेशा जी करके कृष्ण का भजन करना है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है यमराज के दूतों की, नष्ट जन्म स्मृति। जीव को अन्य जन्मों की स्मृति नष्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए इस शरीर में हम लोग हैं, कितनी फिक्र लगी हुई है, आज यहाँ जाना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत बहुत आवश्यकता बुद्धि है। लेकिन जिस दिन शरीर छूट जाएगा और दूसरे शरीर में जाएंगे तो इसकी एक बार याद नहीं आएगी और उसमें फिर आवश्यकता बुद्धि होगी, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है। न देव पूर्वम अपरम, न पूर्व शरीरों की याद करता है, न बाद के शरीर की ही याद नहीं आती है, तो शरीर में हम क्या क्या कर्म किए, कहाँ कहाँ गए, इसकी याद कहाँ से रहेगी। संस्कृत के एक श्लोक में कहा गया है कि लब्धा त्यक्ताश्च, लब्धा त्यक्ताश्च लोकेषु जावन्तो बान्धवा।